18 जून दिन सोमवार दिन भर मैं हूँ रेहान फदर। उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी के धरने को लेकर खड़े किए सवाल, लेकिन पार्टी और उपराज्यपाल के बीच गतिरोध अब भी जारी।
ये कोई धरना देने की नौबत एक दिन में नहीं आई। हमने लोकतांत्रिक ढंग से जितनी भी प्रक्रियाओं का पालन होना चाहिए वो किया दिल्ली के लोगों के हक में।
कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों और चरमपंथियों के बीच मुठभेड़, क्या सोचते हैं कश्मीर के लोग भारत सरकार के सीज फायर खत्म करने के फैसले पर?
बहुत अनफॉर्चुनेट है, तो यहाँ पे अगर सीज फायर विड्रॉ नहीं किया जाता तो लोगों को बहुत राहत मिल जाती, अगर यूनिलैटरल ही सीज फायर होता।
होंगे आपके पत्रों के उत्तर भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार नवीन नेगी से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पिछले 8 दिनों से उपराज्यपाल के सरकारी निवास पर धरने पर बैठे हैं। वहीं इस धरने पर आज दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से सवाल किए। हाई कोर्ट ने कहा कि वे समझ नहीं पा रहे हैं कि ये धरना है या हड़ताल, और इस धरने की इजाज़त किसने दी है। कोर्ट ने दिल्ली में चल रहे राजनीतिक संकट का समाधान निकालने की बात भी कही। जम्मू कश्मीर में रमजान के दौरान महीने भर तक चले सीज फायर को केंद्र सरकार ने आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही राज्य में एक बार फिर सुरक्षा बलों ने अपना अभियान शुरू कर दिया है। सोमवार को बिजबेहरा और बांदीपुरा इलाके में चरमपंथियों के खिलाफ अभियान शुरू किया गया। बांदीपुरा में सुरक्षा बलों और चरमपंथियों के बीच मुठभेड़ में 4 चरमपंथियों के मारे जाने की सूचना मिली है। गुजरात के गांधीनगर जिले में एक दलित युवक को अपनी बारात ले जाने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। दरअसल मानसा तहसील के पारसा गांव में दरबार जाति के कुछ लोगों ने प्रशांत सोलंकी नामक युवक की बारात इस बात पर रोक दी कि वे घोड़ी पर बैठकर नहीं जा सकते। बाद में प्रशांत पुलिस की सुरक्षा के बीच अपनी बारात लेकर गए। गजा पट्टी को इसराइल से अलग करने वाली सीमा के पास एक फिलिस्तीनी युवक की मौत हो गई। फिलिस्तीनी सूत्रों के अनुसार उस व्यक्ति को गोली मारी गई थी, जबकि इसराइल का कहना है कि वह व्यक्ति सीमा के पास लगे सुरक्षा उपकरण को खराब करने की कोशिश कर रहा था, जिसमें हुए विस्फोट के चलते उसकी मौत हो गई। इससे पहले इसराइली सेना ने गजा में 9 ठिकानों पर हमले किए थे। इसराइल का कहना था कि यह कार्रवाई फिलिस्तीन की तरफ से आग लगाने वाले पतंगों और गुब्बारों को छोड़ने की कोशिश के जवाब में की गई। इसराइल के रक्षा मंत्री अविग्डर लीबरमैन ने कहा, अगर किसी को लगता है कि आग लगी पतंगों और गुब्बारों के रोजाना उड़कर इसराइल में आने की घटना यूं ही जारी रहेगी तो वे बिल्कुल गलत हैं। मैं इस बारे में बहुत ज्यादा विस्तार से तो नहीं कहना चाहता, लेकिन हम इसका जवाब जरूर देंगे। ये थे इसराइल के रक्षा मंत्री के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। यमन की राजधानी सना के पास होदेदा एयरपोर्ट पर सऊदी नेतृत्व वाली सेना और होती विद्रोहियों के बीच चल रहा संघर्ष अभी भी जारी है। बताया जा रहा है कि सऊदी के नेतृत्व वाली सेना ने हौथी विद्रोहियों पर हेलीकॉप्टर से भी हमले किए हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र के दूत ने हौथी विद्रोहियों से इस संबंध में बात की और कहा कि वे संघर्ष को समाप्त करने के लिए सहमत हो जाएं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की ये कोशिशें कामयाब होती नजर नहीं आ रही हैं। संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार उच्चायुक्त जैद राद अल हुसैन ने कहा कि यमन की सरकार सऊदी के साथ मिलकर भारी संख्या में आम नागरिकों के लिए मुश्किल हालात पैदा कर रही है। उन्होंने कहा,
I emphasize my grave worry regarding the Saudi
and होदेदा में सऊदी के समर्थन वाली सेना की तरफ से चल रहे अभियान के प्रति मैं गंभीर चिंता व्यक्त करना चाहता हूं। इस अभियान में अभी तक कई आम नागरिकों की मौत हो गई है। इसके साथ ही एयरपोर्ट के जरिए जो सहायता सामग्री प्रभावित इलाकों तक पहुंचाने की कोशिशें होती हैं उन पर भी असर पड़ रहा है। ये थे संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार के उच्चायुक्त जैद राद अल हुसैन के शब्द। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जर्मनी के लोग प्रवासियों के मुद्दे पर अपनी सरकार के विरोध में खड़े हो रहे हैं। ट्रंप प्रशासन पर खुद प्रवासी परिवारों को अलग करने के आरोप लग रहे हैं। ट्रंप ने यूरोपीय देशों पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने लाखों लोगों को अपने देश की संस्कृति बदलने का न्योता देकर भारी भूल की है। ट्रंप का यह बयान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश की पत्नी लॉरा बुश के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने ट्रंप की नीति का यह कहते हुए विरोध किया था कि वे मैक्सिको से आ रहे परिवारों के बच्चों को अपने परिजनों से अलग कर रहे हैं। जर्मनी की कार निर्माता कंपनी ऑडी के मालिक रूबर्ट स्टेडलर को उनके एक अन्य अधिकारी के साथ डीजल उत्सर्जन से जुड़े घोटाले में शामिल होने के आरोपों पर गिरफ्तार किया गया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और उपराज्यपाल के बीच का तनाव अभी भी जारी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा राजनिवास पर शुरू किए गए धरने का आज 8वां दिन था। इस बीच केजरीवाल के साथ अनशन पर बैठे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मंत्री सत्येंद्र जैन की हालत बिगड़ने के बाद उन्हें लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी आम आदमी पार्टी के धरने को लेकर सवाल खड़े किए हैं। पूरी रिपोर्ट के साथ सलमान रवि।
उपराज्यपाल अनिल बैजल के आवासीय कार्यालय पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के 3 मंत्रियों के अनशन का आज 8वां दिन है और 4 में से 2 मंत्रियों की हालत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सबसे पहले देर रात मंत्री सत्येंद्र जैन को अस्पताल ले जाया गया, जबकि सोमवार की दोपहर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की हालत बिगड़ने पर उन्हें भी राजनिवास से अस्पताल ले जाया गया है। दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में मौजूद आम आदमी पार्टी की विधायक अलका लांबा ने पत्रकारों से बात करते हुए उपराज्यपाल पर तानाशाही का आरोप लगाया।
अभी भी उम्मीदें टिकी हैं, एलजी साहब अपना तानाशाह रवैया छोड़ दें। दो मंत्री लोगों की मांग को लेकर, अपने लिए नहीं लोगों के लिए वहां बैठे थे, दोनों अस्पताल पहुंच चुके हैं। थोड़ी इंसानियत दिखाइए, मुख्यमंत्री के पास जाकर बात कर लीजिए। आप ही के घर में पिछले 8 दिन से बैठे, बात करिए, बात करिए।
वहीं सोमवार को ये मामला दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष भी आया। वकील हरि रामनाथ ने उच्च न्यायालय में केजरीवाल के धरने को लेकर याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई करते हुए न्यायालय ने दिल्ली की सरकार के वकील से कई सवाल पूछे। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को निर्धारित की गई है। हरि रामनाथ कहते हैं,
हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करी है। हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट से डायरेक्शन मांगा है कि मुख्यमंत्री साहब को डायरेक्शन दें कि वो धरना खत्म कर करके अपने काम काज पर वापस आए सचिवालय में और जनता के कागज को संभाले। मुख्यतः हमने मांग की है कि ऑनरेबल मुख्यमंत्री के धरने को गैर कानूनी घोषित किया जाए और उस पर एक डायरेक्शन फाइल किया जाए कि भविष्य में ऐसा कोई घटना न हो जिससे कि जनता के काम को प्रभावित करे।
राज्यसभा के सांसद और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का कहना है कि उनके वकील न्यायालय के सवालों का जवाब दायर करेंगे।
माननीय उच्च न्यायालय ने जो कुछ भी हमसे पूछा है हम उसका जवाब देंगे, लेकिन आप सारे लोग जानते हैं और माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष भी हम इस बात को रखेंगे कि ये कोई धरना देने की नौबत एक दिन में नहीं आई। हमने लोकतांत्रिक ढंग से जितनी भी प्रक्रियाओं का पालन होना चाहिए वो किया, दिल्ली के लोगों के हक में निवेदन किया, विनती किया, पत्र लिखा, सब कुछ करके देख लिया।
संजय सिंह का ये भी कहना था कि दिल्ली के माहौल को लेकर उनकी पार्टी ने आम लोगों से कहा है कि वो प्रधानमंत्री कार्यालय में चिट्ठी भेजे।
दिल्ली संकट में है, मुसीबत में है, परेशानी में है, तमाम तरीके की समस्याएं, पानी से लेके राशन से लेके प्रदूषण से लेके तमाम तरीके की समस्याएं पैदा हो गई हैं और अगर आईएएस अधिकारियों की हड़ताल ऐसे ही चलती रही तो दिल्ली के लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं, ये अपने आंदोलन को और व्यापक करेंगे और बड़ा बनाएंगे।
इस बीच आईएएस एसोसिएशन ने भी संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर इस बात से इनकार किया है कि दिल्ली में प्रशासनिक अधिकारी हड़ताल पर हैं। एसोसिएशन की सचिव मनीषा सक्सेना कहती हैं,
हम सारी मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, हम जितने पब्लिक इंस्पेक्शंस हैं वो कर रहे हैं, जितना काम जिस मौसम में जैसा जैसा जिस विभाग का होता है हर विभाग अपना काम कर रहा है और कोई भी ऑफिसर ऐसा नहीं है जो कि स्ट्राइक पर हो या काम स्लो करने के लिए बैठा हो, एवरीबॉडी इज वर्किंग।
वहीं दिल्ली कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजय माकन ने दिल्ली के हालात को लेकर अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा।
टैंकर के झगड़ों के ऊपर लोगों की जाने जा रही हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि प्राइवेट पानी को जो टैंकर माफिया है उनको पानी मिल रहा है लेकिन गरीब जनता को पानी नहीं मिल रहा है। और मोदी के और केजरीवाल के नाक के नीचे भारत की राजधानी के अंदर अगर ऐसा हाल है तो आप समझ सकते हैं बाकी जगह पे क्या होगा। अगर ये सरकार जो है काम करने की जगह सिर्फ धरना और प्रदर्शन ये सरकार करेगी तो काम कौन करेगा।
हालांकि रविवार की देर रात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रशासनिक अधिकारियों के नाम अपील जारी कर उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। केजरीवाल के बयान के बाद दिल्ली सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच सुलह के आसार नजर आने लगे हैं। आईएएस अफसरों के संगठन ने अरविंद केजरीवाल की अपील का स्वागत करते हुए कहा है कि वो पूरी ऊर्जा के साथ काम करना चाहते हैं। सलमान रावी, BBC दिल्ली।
भारत प्रशासित कश्मीर के जिला बांदीपुरा में चरमपंथियों और सुरक्षा बलों के बीच आज सुबह से मुठभेड़ जारी है। ये मुठभेड़ भारत सरकार की एक तरफा सीज फायर की घोषणा समाप्त होने के एक दिन बाद शुरू हुई है। सीज फायर को आगे न बढ़ाए जाने पर भारत सरकार के फैसले पर आम लोग और विश्लेषक क्या कहते हैं, बता रहे हैं श्रीनगर से माजिद जहांगीर इस रिपोर्ट में।
कश्मीर घाटी में एक महीने तक चलने वाले एक तरफा सीज फायर खत्म होने के एक दिन बाद सुरक्षा बलों ने सोमवार को जिला बांडीपोरा में चरमपंथियों के खिलाफ उस ऑपरेशन को फिर से शुरू किया है जो ऑपरेशन बीते कुछ दिनों से स्थगित किया गया था। जिला बांडीपोरा के रेनार जंगलों में सुरक्षा बलों ने 9 जून को चरमपंथियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया था जब सुरक्षा बलों और चरमपंथियों के बीच गोलियों का तबादला हुआ था। खबरों के मुताबिक 14 जून को इस ऑपरेशन में 2 चरमपंथी और सेना का एक जवान मारा गया था। खबरों के अनुसार सोमवार सुबह से जारी इस मुठभेड़ में अभी तक 2 चरमपंथी मारे गए हैं। हालांकि पुलिस ने अभी तक किसी भी चरमपंथी को मारने की पुष्टि नहीं की है। कश्मीर जोन के IGP SP पानी ने बताया कि यह ऑपरेशन अभी तक चल रहा है। इस बीच आज दक्षिणी कश्मीर के वागामा इलाके में सुरक्षा बलों ने 16 मई को भारत सरकार की सीज फायर घोषणा के बाद चरमपंथियों के खिलाफ पहला सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया। भारत सरकार की सीज फायर घोषणा के बाद बीते एक महीने में कश्मीर में चरमपंथियों ने सुरक्षा बलों पर कई एक हमले अंजाम दिए, जिन हमलों में कई एक सुरक्षा बल या तो मारे गए या घायल हो गए। हालांकि कश्मीर में आम लोग भारत सरकार के सीज फायर को आगे न बढ़ाने के फैसले से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। एक आम नागरिक डॉक्टर सजाद,
बहुत अनफॉर्चुनेट है, तो यहाँ पे अगर ये नहीं हो जाता, सीज फायर विड्रॉ नहीं किया जाता तो लोगों को बहुत राहत मिल जाती। अगर यूनिलैटरल ही सीज फायर होता लोगों को बहुत ज्यादा राहत मिल जाती, उसे होता ये कि लोगों में एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर आ जाता है।
कश्मीर के विश्लेषक भारत सरकार के एक तरफा सीज फायर की घोषणा और उसको आगे न बढ़ाने के हवाले से कहते हैं कि भारत सरकार का ये कदम कई मानियों में सोच समझ कर उठाया नहीं गया। कश्मीर के वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक अहमद अली फयाज कहते हैं,
मैं ज्यादातर समझता हूँ कि ये एक पॉलिटिकल एक डिसीजन था, बट इनकंसीवेबल पॉलिटिकल डिसीजन, जिससे बाजार तौर पर जो होमवर्क होना चाहिए वो नहीं हुआ था। सीज फायर का मतलब ये होता है कि दोनों तरफ से जंगबंदी हो, मिलिटेंट्स की तरफ से भी, गवर्नमेंट फोर्सेस की तरफ से भी। और जब भी यहाँ पे हुआ है, मिसाल के तौर पर 2000 में जब हुआ था या 2001 में हुआ था मिलिटेंट्स के साथ, और 2003 नवंबर 23 हुआ था इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज के बीच।
हालांकि उनका ये भी कहना था कि बीते एक महीने से जिस तरह से चरमपंथियों ने अपने हमले अंजाम दिए, उन हमलों से सुरक्षा बलों का मनोबल गिर रहा था और भारत सरकार के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था कि वो सीज फायर की घोषणा को एक महीने तक ही सीमित रखे। अहमद अली फयाज,
अब इन पे काफी दबाव था लोगों की तरफ से और रियासत से बाहर का कई लोगों की तरफ से कि इसे सर बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसे सिक्योरिटी फोर्स काफी डिमोरलाइज हो सकते हैं और एक सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि यहाँ पे कभी भी इलेक्शन भी नहीं हो पाएंगे। तो दूसरी तरफ से लेकिन उन पे पॉलिटिकल दबाव भी था, जो इनकी सहयोगी पार्टी है यहाँ जो कश्मीर के इक्तदार में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, वो उनको बता रही थी कि इसको एक्सटेंड कर लीजिए अमरनाथ यात्रा के इख्तिताम तक, या कम से कम 1-2 महीने के लिए इसको कर लीजिए एक्सटेंड। इस दबाव के बीच में दोनों तरफ से जो काउंटर फोर्सेस काम कर रहे थे, पहले ये फैसला हुआ कि इसको एक्सटेंड नहीं करना चाहिए।
राज्य की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह के हालिया कश्मीर दौरे के दौरान ये उम्मीद की थी कि गृह मंत्री कश्मीर में सीज फायर को आगे बढ़ाने की घोषणा करेंगे, जबकि ऐसा नहीं हुआ। वर्ष 2017 में कश्मीर घाटी में मुठभेड़ों के दौरान 200 से भी ज्यादा चरमपंथी मारे गए थे। माजिद जहांगीर, BBC श्रीनगर।
गुजरात में गांधीनगर की माणसा तहसील से खबर आ रही है कि वहां के पारसा गांव में बारात लेकर पहुंचे दलित युवक को कथित बड़ी जाति के लोगों ने घोड़ी से नीचे उतार दिया। पारसा गांव की दरबार जाति के कुछ लोगों ने इस बारात को रोका था, इसके बाद पुलिस बुलानी पड़ गई थी। स्थिति इतनी विपरीत हो गई थी कि पूरी शादी के दौरान पुलिस बंदोबस्त रखना पड़ा। मैंने अहमदाबाद फोन कर BBC गुजराती सेवा के भार्गव पारीख से संपर्क किया और इस घटना का विवरण मांगा।
देखिए, ये नॉर्थ गुजरात के मेहसाणा के बोरियावी गांव से ये बारात यहाँ पे आई थी, और ये बारात जो थी वो चाणसमा के पासरा गांव के अंदर यहाँ पे पहुंची थी। तो वो पासरा गांव के अंदर जब वो डीजे और घोड़ी के साथ वहां पे दलित गए, तो उनको राजपूत दरबार कम्युनिटी के लोगों ने उसको रोका और उसके बाद उसको घोड़ी पे चढ़ने नहीं दिया, और पुलिस ने उसके बाद इंटरवीन किया और गांव के सरपंच ने पूरे मामले में इंटरवीन किया, और इंटरवीन करने के बाद 3 घंटे के बाद वो शादी हो पाई पुलिस ने इंटरवीन करने के बाद, और पुलिस ने इस पूरे मामले के अंदर 10 लोगों के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट दाखिल किया है।
तो कोई गिरफ्तारी भी हुई है इस संबंध में?
जी, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन 10 लोगों के खिलाफ वो एक कंप्लेन लॉन्च कर दी गई है और पुलिस इन 10 लोगों को अभी तलाश कर रही है। और पुलिस ने एट्रोसिटी एक्ट के तहत इन लोगों के खिलाफ और जान से मारने की धमकी इनके खिलाफ इन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।
ये एक वन ऑफ केस है या गुजरात में इस तरह की घटनाएं होती रही हैं पहले भी?
देखिए, ये गुजरात के अंदर इससे पहले भी इस तरह की घटना हो चुकी है और इसी पासरा गांव जो है उस गांव के अंदर 2 महीने पहले एक शादी के अंदर घोड़ी में चढ़ने के लिए ऐसा ही एक मामला हुआ था, लेकिन गांव के लोगों ने इसको पूरे मामले को सुलझाया था साथ में बैठ के। इससे पहले भावनगर के अंदर एक आदमी को टिंबी गांव के अंदर एक आदमी को घोड़ी पे चढ़ने के लिए दरबार कम्युनिटी के लोगों ने उसको जान से मार दिया था। तो इस प्रकार की घटनाएं काफी गुजरात के अंदर पिछले कुछ दिनों के अंदर बढ़ती जा रही है। और गुजरात के अंदर अगर देखा जाए तो दलित जो कम्युनिटी है वो अपने नाम के पीछे थी लिखवाती है, जो वैसे दरबार कम्युनिटी में लिखाया जाता है, तो थी लिखवाने के पीछे भी दलित कम्युनिटी के लोगों के ऊपर काफी हमले होने की वारदातें पिछले दिनों के अंदर, पिछले 2 महीने के अंदर ज्यादा हुई है।
ये थे बीबीसी गुजराती सेवा के भार्गव पारीख। ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फजल के साथ। हाल के दिनों में चीन में कुछ प्रोफेसरों की बर्खास्तगी विवादों में रही है। कहा जा रहा है कि चीन अनकहे तौर पर विश्वविद्यालय के छात्रों को इस बात के लिए बढ़ावा दे रहा है कि वो कक्षाओं में प्रोफेसरों के राजनीतिक तौर पर अनुचित बयानों की शिकायत करें। इस पूरे मसले को समझने के लिए हमारे सहयोगी कुलदीप मिश्र ने चीन में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार सैबल दास गुप्ता से बात की।
हिस्टोरिकली ऐसे पहले होते आए हैं और जब पहले होते थे वो सबको अब कल्चर रेवोल्यूशन के टाइम पे स्टूडेंट्स लोग करते थे और उनको सर पे चढ़ा के रखा था, तो वो सब तो फिर कम्युनिस्ट पार्टी ने डिसअप्रूव कर दिया और उससे बिल्कुल अलग हो गई और उन्होंने कहा कि ये डार्क पीरियड था। उसके बाद शी जिनपिंग जब 1 साल से कम हुआ, 8-9 महीने पहले, तो सेकंड टाइम वो प्रेसिडेंट बन के आए तो बड़ा जोर शोर से नेशनलिज्म का चक्कर चला और नेशनलिज्म में पॉलिटिकली करेक्ट होना बहुत जरूरी है। स्कूल्स में ज्यादातर टीचर तो दबे रहते हैं, लेकिन कुछ टीचर्स लोग जो फ्री विलिंग है, खास करके जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, 2 टीचरों को तो डिसमिस किया गया है। वैसे तो देखिए सैकड़ों टीचर डिसमिस हुए होंगे, लेकिन वो सब क्लाउड ऑफ कंफ्यूजन में है। स्टूडेंट्स लोगों ने तो हंड्रेड्स ऑफ कंप्लेंट्स फाइल किए। एक्चुअल एक्शन जहां तक एग्जांपल सेट करने लायक है वो 3 लोग प्रोफेसर के हैं, लेकिन कम से कम 2 डजन प्रोफेसर को एडमिनिस्ट्रेटिव पेनल्टीज दिए गए हैं।
अगर आप कुछ हाल की घटनाओं से बता सकें कि किस तरह की टिप्पणियों के लिए शिक्षकों पर कार्रवाई की जा रही है?
सोशल मीडिया में तो कुछ है ही नहीं, जो रिफ्लेक्ट होता है सोशल मीडिया में होता है और इने गुने केस ऑफिशियल मीडिया में प्रेस किए जाते हैं। लेकिन फॉर्मल कंडीशन ये है कि ऑफिशियल को मीडिया को भी पता नहीं कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट का जो व्यू है इस पर ये साफ नहीं है। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी के जो अपने पेपर्स हैं वो लोग केस को प्रेजेंट कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं कि ये सही है ये गलत है। 2014 से लेके चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एक कैंपेन कर रही है, उसमें वो लोग ये कह रहे हैं कि जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो विचार हैं उससे यूनिवर्सिटी की शिक्षा हट गई है और आइडियोलॉजी को ठीक तरीके से प्रेजेंट नहीं किया जाता है, और इस तरह से कुछ 14 यूनिवर्सिटीज को पेनलाइज किए गए थे और उनके वाइस चांसलर्स को रिमूव किए गए थे। एक दिन में नहीं हुए, ओवर अ पीरियड ऑफ 2-3 ईयर्स। लेकिन पूरा समझने के लिए आपको कॉन्टेक्स्ट ये देखना होगा कि चाइनीज पार्टी के अंदर, मीडिया के अंदर और नेताओं के ऑफिशियल्स के बयानों में बार बार ये बात आती है कि विदेशी लोग आके, खास करके वेस्टर्नर्स आके हमारा यहाँ एटमॉस्फेयर को पॉलिटिकली पॉल्यूट कर रहे हैं और उनके इन्फ्लुएंस में ना आए तो अच्छा है।
आधिकारिक तौर पे या ऑफिशियली कोई ऐसा डायरेक्टिव कभी सरकार की ओर से दिया गया या ये सिर्फ ये अनकहे तौर पर एक एनकरेजमेंट है?
पूरा के पूरा कम्युनिस्ट सिस्टम सिम्बोलिज्म पे चलता है। जैसे शी जिनपिंग ने 3 महीने पहले या 3.5 महीने पहले ये कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी के आइडियोलॉजी को बढ़ाने के लिए फ्रंट लाइन इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो वो फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो या इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हो, वो पार्टी का आइडियोलॉजी को फ्रंट लाइन पे ला रहे हैं नहीं ला रहे हैं उस पर फिर टॉर्च लगने लगा।
इसे अगर बड़े संदर्भ में देखें तो चीन की जो हाल में महत्वाकांक्षाएं हैं, या जैसे कहा जाता है कि चीन अपने देश के भीतर नौजवानों में विचारधारा को मजबूत करने में लगा है, तो उस संदर्भ में वैश्विक राजनीति के संदर्भ में इसका कोई मतलब है?
बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो यह है कि चीन दोनों तरफ जा रही है ना, कि एक तरफ से तो वो दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन इसमें तो कोई दो मत है ही नहीं कि चीन इंटरनली बैकवर्ड जा रही है। जहां तक डेमोक्रेसी का सवाल है, आइडियोलॉजी का सवाल है, वो कम्युनिस्ट ऑर्थोडॉक्सी पे जा रही है, उदारीकरण से बहुत बहुत दूर हट रही है। यहाँ तक कि जो पंचायत लेवल पे डेमोक्रेसी के एक्सपेरिमेंट करने वाले थे वो भी बंद हो गए हैं। तो एजुकेशन में ये हो रहा है कि इसका एक असर हो रहा है।
आज ये थे सैबल दास गुप्ता और उनसे बात कर रहे थे कुलदीप मिश्र। आज सोमवार है और आज के दिन आपको इंतजार रहता है अपने पत्रों का।
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का। और बहुत दिनों बाद मेरे साथ सूर्यांशी पांडे हैं।
नमस्कार। लेकिन राजेश जी, यहाँ पे बहुत ठंड लग रही है स्टूडियो में।
इसलिए आपकी आवाज की कपकपाहट मुझे भी सुनाई पड़ रही है और शायद मेरी आवाज की कपकपाहट हमारे श्रोताओं को सुनाई पड़े। मैं बहुत दिनों बाद आज आपसे मुखातिब हूँ, तो चिट्ठियों का सिलसिला शुरू कीजिए।
हाँ, और सबसे पहला खत पोस्ट कार्ड है, ये भेजा है प्रमोद कुमार श्रीवास्तव जी ने, जो लिखते हैं अमेठी उत्तर प्रदेश से। और ये लिखते हैं,
अगर आप इनके गाँव का नाम नहीं पढ़ेंगी तो आपसे नाराज हो जाएंगे।
अच्छा,
कैथनपुरवा। बहुत पुराने हमारे श्रोता हैं और बहुत ही सजग श्रोता हैं।
और ये इन्होंने लिखा भी है कि मैं बहुत पुराना श्रोता हूँ। और इन्होंने ये लिखा है कि दिन भर का कार्यक्रम जो वात्सल्य राय जी का सभा संचालन था वो शानदार रहा। उन्होंने नवीन नेगी की रिपोर्ट के बारे में कहा है कि उन्हें बेहद पसंद आई, और जुबैर अहमद की रिपोर्ट भी उन्हें अच्छी लगी।
ये किस तारीख की बात कर रहे हैं?
ये 10 तारीख की बात कर रहे हैं,
10 जून के का कार्यक्रम इनको पसंद आया। वो पोस्ट कार्ड इन्होंने लिखा है, यहाँ पहुँचते पहुँचते अब आज 18 जून हो गई है, तो बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत, आपकी चिट्ठी मिली, बहुत बहुत शुक्रिया।
दूसरा खत है हरी बिलास सिंह तोमर जी का, जो लिखते हैं मुरैना से, मध्य प्रदेश से। और ये लिखते हैं कि इनको 25 मई को रेहान फजल जी की जो विवेचना थी वो बेहद पसंद आई, जो नेहरू जी पर विवेचना थी। और एक शिकायत थी इनकी, ये मान सकते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन से नेहरू जी की जो दोस्ती है उसका जिक्र नहीं हुआ था विवेचना में।
देखिए, 13-12 मिनट की विवेचना होती है और ये जो व्यक्तित्व रेहान साहब अपनी विवेचनाओं में लाते हैं, उनका जीवन बड़ा विशद, बहुत विशाल रहा है, तो 13-12 मिनट में बड़ा मुश्किल हो जाता है हर पहलू को समेट पाना। फिर भी रेहान साहब उसको गागर में सागर तो भरते ही हैं। हाँ। तो एकाध अगर कोई ऐसी छोटी चीज़ें नज़रअंदाज हो भी गई हो रेहान साहब से, तो मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं।
बिल्कुल, लेकिन एक छोटी सी बात लेकिन मोटी बात जो है की है, सादिक आजमी जी ने, सऊदी अरब से लिखते हैं ये। इनको नितिन श्रीवास्तव की रूस में शिक्षा ग्रहण करने की दशा में समीक्षा पसंद आई थी और उन्होंने इसका थोड़ा विस्तार में विश्लेषण भी किया है, लेकिन उन्होंने एक बात कही है कि आप रेडियो पर वेबसाइट की चीज़ों के बारे में जानकारी देकर उन श्रोताओं के मन को ठेस पहुँचा रहे हैं जो सिर्फ रेडियो को अपना प्रसारण सुनते हैं।
अरे साहब, ये तो आपकी मैं पूरी तरह से मानता हूं कि कई बार हमको क्रॉस प्रमोशन, इसे हम कहते हैं, अगर आपके पास सिर्फ रेडियो है और रेडियो पर सुन रहे हो तब शायद आपके लिए इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग रेडियो प्रोग्राम सुनते हैं उसके बाद वेबसाइट पर भी जाते हैं, तो उन श्रोताओं के लिए ये हम बताते हैं कि वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो आपको कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से आलेख पढ़ने को मिलेंगे, तस्वीरें मिलेंगी या वीडियो मिलेंगे, उसका सिर्फ यही मकसद है, और कोई चिढ़ाना या आपको नाराज़ करना हमारा मकसद तो कतई हो ही नहीं सकता है।
ये दूसरा ईमेल भेजा है आशुतोष कुमार पांडे ने, आरा बिहार से लिखते हैं, और ये लिखते हैं कि प्रियंका दुबे की दो रिपोर्ट बाथे बतानी और शामली को लेकर आई थी। जब रिपोर्ट आई उस समय तो कोई लंबी बहस नहीं चली थी इस पर, लेकिन हाल ही में बाथे बतानी पर बहस गर्म है, बहुत लोग नाराज है, वे उस घटना को लेकर की गई रिपोर्टिंग के एक तरफा और बायस बता रहे हैं।
आशुतोष जी, बहुत पहले प्रियंका दुबे ने ये रिपोर्ट की थी, और ऐसा होता है कई बार कि जब हम लोग कई रिपोर्टों को इस तरह इसलिए करते हैं क्योंकि कोई दूसरा उस पर बात नहीं कर रहा होता है, वो एक तरह से पर्दे के पीछे चली जाती हैं चीज़ें, तो हम अपने श्रोताओं को एक तरह से याद दिलाते हैं कि ऐसा भी हुआ था। और अगर आज कुछ लोग उस पर बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पर या सड़कों में, मोहल्लों में या चाय की दुकानों पर, तो ये अच्छी बात है। लोगों की नाराज़गी या दूसरा नज़रिया होना कोई गलत बात नहीं है, सबको अपने अपने नज़रिए को सामने रखने की हक है और आज़ादी है।
ये अगला जो मेल है वो भेजा है जीशान नैयर ने, ये गांव तरैया से लिखते हैं, पोस्ट सांक और जिला बेगूसराय बिहार।
क्या लिख रहे हैं?
उन्होंने लिखा है कि आज सुबह के प्रोग्राम में वसतुल्ला खान साहब की डायरी उन्हें हमेशा से पसंद आई, और साथ ही साथ उन्होंने एक बात का जिक्र किया है कि इंडिया बोल इत्तेफाक से उन्होंने सुन लिया, जो उनको बहुत ही रोचक लगा वो विषय, और उनकी प्रस्तुति भी बहुत अच्छी लगी। विवेचना में सुरैया पे प्रस्तुति उन्हें अच्छी लगी, और एक सुझाव है कि रविवार को कोई पुराना साक्षात्कार भी सुनाया जाए।
जीशान साहब, आप तो लगातार चिट्ठी लिखते रहते हैं, हम कई बार आपकी चिट्ठियाँ इस्तेमाल भी करते हैं, और आप भी बहुत ही रेगुलर लिसनर हमारे आप हैं, तो जो आपने सुझाव दिया है कि रविवार को पुराना कोई साक्षात्कार हम सुनवाएं, तो कई बार हम सुनवाते हैं, अगर कोई मौका होता है, कोई दस्तूर होता है, तो पुराने हम जो बीबीसी के ख़जाने से कार्यक्रम हम प्रस्तुत करते हैं। लेकिन जहां तक बात अपने विवेचना की कही, विवेचना तो जाहिर सी बात है आपको पसंद आती है, लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है कि इंडिया बोल आपने इत्तेफाक से क्यों सुन लिया? उसको आप हर शनिवार को सुनिए और उसमें हिस्सेदारी करेंगे तो और अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ सूर्यांशी मुझे मालूम है आपके पास बहुत सारी और ईमेल्स हैं और चिट्ठियां भी हैं, लेकिन समय इजाज़त नहीं दे रहा है, इसलिए हम अब श्रोताओं से इजाज़त चाहते हैं। चलते चलते पता नोट कीजिएगा, बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003। ईमेल लिखना चाहें तो पता है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
और अब चर्चा फीफा वर्ल्ड कप की। अभी अभी स्वीडन और दक्षिण कोरिया का मैच समाप्त हुआ है। राखी शर्मा पूरी तरह से मैच पर नजर रखे हुए हैं, मेरे सामने समय बैठी हुई हैं। बताइए राखी, क्या रहा परिणाम?
जी, परिणाम रहा कि दक्षिण कोरिया हार गई है स्वीडन से 0-1 से, और इस मैच का जो इकलौता गोल आया स्वीडन के कप्तान आंद्रे ग्रानक्विस्ट ने किया, पेनल्टी पर उन्होंने ये गोल किया। हाफ टाइम तक दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर थीं, और इस मैच के नतीजे पर और ज्यादा बात कर रहे हैं गौस मोहम्मद।
मुश्किल पेश की आज स्वीडन को उन्होंने, और साउथ कोरिया ने बड़ी कोशिशें जरूर की, पर मेरे ख्याल से 2-3 बार वो हेडर जो थे उनके चूक गए, अन्यथा डिफेंस जो है स्वीडन की आमतौर पर बेहतर रहती है। उन्होंने अच्छे तरीके से अपने गोल की जो है हिफाजत की, और जो फॉरवर्ड स्वीडन के खेल रहे थे उनके लिए जो एक खासियत है जापान और कोरिया की टीम की, इनके रिफ्लेक्सेस और इनकी गति इतनी अच्छी है कि जो इनकी रिकवरी होती है, अगर पीछे काउंटर अटैक होता है तो बहुत तेज दौड़ के आते हैं, और जो विपक्षी फॉरवर्ड होते हैं उनको वो मार्क करके लगते हैं। अगर हम कहें कि आज का जो गोलकीपर है साउथ कोरिया का, गोलकीपर ने भी बहुत अच्छे खेल पेश किया, क्योंकि देखिए तो मेरे ख्याल से स्वीडन की ये एक अच्छी जीत है, एक अच्छी शुरुआत है।
फुटबॉल विशेषज्ञ गौस मोहम्मद को आप सुन रहे थे। और वहीं फीफा रैंकिंग में तीसरे स्थान पर काबिज बेल्जियम की टीम अब से कुछ देर बाद ग्रुप जी में पनामा के खिलाफ उतरेगी। सुनहरे दौर से गुजर रही बेल्जियम में ईडन हजार्ड, केविन डी ब्रुइन और जैसे शानदार खिलाड़ी हैं जिनसे रूस में अच्छे प्रदर्शन की अपेक्षा होगी। ग्रुप जी में इंग्लैंड की टीम भी है, लेकिन बेल्जियम टीम के नॉकआउट दौर में पहुंचने की संभावना ज्यादा है। इसके बाद होने वाले मुकाबले में पिछले विश्व कप में ग्रुप चरण और यूरो 2016 में दूसरे राउंड से बाहर होने वाली इंग्लैंड की टीम ग्रुप जी के मुकाबले में ट्यूनिशिया से भिड़ेगी। टूर्नामेंट में इंग्लैंड की टीम तीसरी सबसे युवा टीम है और इस समय टीम में कोई बड़ा नाम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ट्यूनिशिया अपना 5वां विश्व कप खेल रही है, लेकिन ग्रुप चरण से वो आगे अब तक नहीं बढ़ पाई है। ट्यूनिशिया ने 5 बार के अपने विश्व कप के 12 मुकाबलों में सिर्फ 1 बार जीत दर्ज की है।
बहुत बहुत धन्यवाद राखी आपका, और चलते चलते सुनते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच चल रहे विवाद पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज सवाल पूछे। कोर्ट ने कहा कि किसकी इजाजत से मुख्यमंत्री उपराज्यपाल के घर पर धरना दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में महीने भर तक चले सीजफायर की मियाद पूरी होने के बाद सुरक्षा बलों ने एक बार फिर अपना अभियान शुरू कर दिया है। सोमवार को सेना ने बिजबेहरा और बांदीपुरा इलाकों में चरमपंथियों के खिलाफ अभियान शुरू किया। गजा पट्टी को इसराइल से अलग करने वाली सीमा के पास एक फिलिस्तीनी युवक की मौत हो गई। इजरायली सेना ने गजा में 9 ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जर्मनी के लोग प्रवासियों के मुद्दे पर अपनी सरकार के विरोध में खड़े हो रहे हैं, जबकि ट्रंप प्रशासन पर खुद प्रवासी परिवारों को अलग करने के आरोप लग रहे हैं। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे कपिल देव, रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।